देती है। अप्राणियों में भी अयोग्यों में भी अपने जैसा भाव आरोप करके उसे ईर्ष्या करती। कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, गोपियां देखी, अरे ये तुलसी में मंजरी लगी हुई है, भौरे मड़रा रहे हैं, बड़ी खुश है, ये हो न हो जरूर कृष्ण से ये मिली है। और उसे कहते हैं, तुम बतला सकते हैं कि किधर गए? क्या तुलसी जी जानती हैं? न वृक्ष के वृक्षों से वो पूछ रही है। बस वही आरोप उस समय होता है, ये साधारण स्थिति में नहीं होगा बल्कि महाभाव की स्थिति में ही हो सकता है, ऐसा है। इसलिए महाभाव का यहाँ पर बात है। महाभाव में श्रीमती जी राधिका की महात्मा इतना अधिक है कि किसी को प्राप्त नहीं, किसी को भी नहीं, ऐसी राधा प्रेम की मूर्ति है। यहां तक की और की तो बात छोड़ दो, ब्रज में सबसे अधिक महिमा है चंद्रावली और राधिका जी, और इन दोनों में भी सबसे अधिक है श्रीमती जी का, रूप में, गुण में, उम्र में, सब विषय। वो राधिका जी का महात्मा क्या आपके वर्णनीय है? नहीं, उनके जो भाव गंभीर हैं और उन गंभीर भावों की जो महिमा है, उसका वर्णन करना उद्धव के लिए संभव नहीं, किसी नारद के लिए संभव नहीं, यहां तक कि और क्या कृष्ण में भी संभव नहीं। जो इस चीज को लाभ करते हुए भी, यह सौभाग्य, जो वेणु, वेणु क्या है उसको तो कुछ नहीं, इनको यह सौभाग्य है, अनवरत उसी का ही पान करती हैं, और होने पर भी मुरली के प्रति, मुरली एक मीरा शुष्क काठ का टुकड़ा, और उसके प्रति इन भावों को आरोप करके उसे ईर्ष्या करती हैं। अब उस सखी से कह रहे हैं गोप्या, हे ललिता इत्यादि सखी, ललिता इत्यादि से खड़ी खड़ी है, उनसे ये कह रहे हैं, नीरस यह वेणु, उसमें भी सात छिद्र और मुख वाला लेकर के आठ रंध्र और ये सब छेद है, कुछ नहीं, जो ऐसा कौन सा इसने तपस्या की जो हम लोगों को प्राप्त नहीं, और ये सूखी हुई वेणु को ये प्राप्त है बांस के टुकड़े को। बाबा कहते हैं कि यदि सखियां तुम लोग पौर्णमासी से या गार्गी हैं, ये सर्वज्ञ हैं, यदि उनसे कभी तुम लोगों ने सुना कि उन लोगों ने ऐसी तपस्या करके तब ऐसा सौभाग्य पाया था, तो मैं भी वैसे ही तपस्या करती हूँ जिससे कि हमको भी वैसा ही प्राप्त हो, हमको ये कभी प्राप्त नहीं। यहां पर सखियों से क्यों पूछ रही हो? तो इसलिए कह रही है कि उस तुम में आप ही हैं सर्व सर्वश्रेष्ठ, तो भी अपने लिए भी दूसरों से ये कह रही है। ये कृष्ण का यह कृष्ण की यह संपत्ति का अधिकार केवल तुम लोगों को है, अपने लिए नहीं कहा, लज्जा वशत इस पर केवल मात्र श्रीमती का अधिकार है, किंतु कर तुम लोगों का अधिकार है। और ये बांस बांस का टुकड़ा जोर जबरदस्ती ये भोग रहा है, पान कर रहा है। दामोदर गुप्त की मां गुप्त किम आचर दैनिक स्वस्थ देव दामोदराधर। दामोदर शब्द का प्रयोग इसलिए है, दामोदर कृष्ण के जितने भी नाम हैं उन नामों में भक्तों के वशीभूत होने के कारण उनका नाम दामोदर रखा गया, जिन्होंने सब समय अपने कमर में उधर में रस्सी पहन रखी है, ये भक्ति के द्वारा वशीभूत होने का लक्षण है। राम का कोई जितना भी भजन करे प्रसन्न हो जाएंगे, वर दे देंगे, सब कुछ करेंगे, वशीभूत नहीं है। नृसिंह भगवान जी वर दे देंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, सब कुछ कर देंगे, वशीभूत नहीं होंगे, किंतु कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण कभी किसी को मुक्ति दे देंगे, सहज ही धन संपत्ति दे देंगे, जो कुछ चाहो इस जगत की दे देंगे, किंतु कभी भी भक्ति नहीं देते। क्यों? कृष्ण यदि भक्ति देंगे तो उनके वशीभूत हो जाना चाहते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए भक्ति ना देन राखें लुकाइया, छिपा करके रखते हैं, उनको मुक्ति चुक्ति दे देंगे, धन संपत्ति जो चाहो वो ले लो,
मुक्ति दधाची करी चित मनोभक्ति योग,
किंतु भक्ति नहीं देते। भक्ति जो किसको देंगे? जिन पर विश्वास है। किन पर विश्वास है? जो कि राधा कृष्ण के नित्य परिकर हैं, उन पर विश्वास है। उन लोगों में से गुरु जो है उनके ऊपर में विश्वास है। इसलिए जिसका गुरु पक्का होगा, जिस पर विश्वास है उसको दे। जिसका गुरु ठीक नहीं है और वो जाकर के कहेगा तुम कौन है, जैसे कि संसार में पूछते हैं तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तो वहां पर बाप का नाम नहीं चलेगा, परमात्मा वहां पर क्या चलता है, तुम किसके शिष्य हो, किसके अनुगत हो। यदि उसने बतलाया जैसे मैं अमुक के अनुगत हूं, और वो यदि भक्त नहीं उच्च कोटि का है तो उसको नहीं देगा, उनको भुक्ति हो या मुक्ति देकर के उनको भगा देगा। क्यों? निर्भर योग्य विश्वास से योग्य जो व्यक्ति होंगे, बस आश्रय लिया भजे
तारे कृष्ण नहीं तो
नहीं तजे, आप सब मोरे अकार, और सबको मुक्ति दे देंगे, संसारिक धन संपत्ति सब कुछ प्रतिष्ठा दे देंगे, भक्ति प्रेमा मुक्ति नहीं देगी, वो केवल उस वैसे ही लोगों को देंगे जिनका जिनके गुरु वैसे प्रेमा भक्त हैं, ब्रज भाव से भजन करने वाले सिद्ध हो चुके हैं। इसलिए कह रहे हैं दामोदर यशोदा जी के वशीभूत और राधा जी के वशीभूत, इसलिए राधा दामोदर अथवा जसोदा दामोदर, माँ जसोदा के दामोदर। दामोदर पधर सुधाम अपी गोपी का नाम, दामोदर जो है उनकी सारी संपत्ति के मालिक गोपिका नाम गोपिकाएं हैं, वो गोपियों के दामोदर हैं। कृष्ण की जितना कृष्ण का जितना रूप सौंदर्य माधुर्य गुण सब वह सब के मालिकिनी है ये गोपियां। तुम लोग हो, अपने को नहीं करें, तुम लोग हो, तुम गोपियां। होने पर भी तुम लोगों के सामने ही यह दामोदर बेन है
ना,
कुशलस्म बेन जाति का पुरुष होता हुआ भी, और तुम लोगों का धन तुम लोगों के सामने देखते देखते और खुदकार से तुम लोगों को उड़ा रहा है, मैं तुम लोग कौन है, तुम लोगों के सामने देखो मैं पी रहा, तुम्हारा धन है तो तुम जो इच्छा से तो कर लो, तो इस प्रकार से कहा। यहाँ पर स्मोह है, तुम देखो जो तुम लोग क्या कर सकती हो, हम तुम्हारे सामने ही तुम्हारा है तो तुम लोग कुछ कर लो, किंतु ये कुछ नहीं कर सकते। स्पष्ट अर्थ के लिए यहाँ पर प्रयोग किया, मैं स्पष्ट रूप से तुम लोगों के सामने साक्षात रूप में पी रहा हूं, तुम लोग को जो कुछ करना है करो। हाँ एक बात है, यदि तुम लोगों को ग्रहण करना है तो लज्जा धर्म और सही सुनता ये सबको प्रत्याग करके चले आओ, मैं हट जाऊंगा। यदि तुम लोग ही पीना चाहते लेना चाहते तो ये तीन चीज को छोड़ दो, लज्जा धर्म और सही सुनता छोड़ करके तुम लोग चले जाओ। किंतु ये लोग हम लोग जा नहीं सकती ऐसा करके, इसलिए हम लोग को दिखलाते दिखलाते ये अशेष रूप में पान कर रहा है। यद्यपि यह संपत्ति हम लोग की जीवातु है, कहते हैं हमारा अधिकार कौन है, किंतु फिर भी अनसुना करके हम लोग के सामने ऐसा कर रहा, ये चोरी नहीं कर रहा, चोरी भी नहीं करता, छिप करके भी नहीं, सबके सामने
ठीक बन कर
कैसे किस रूप में पान करता है, अवशिष्ट रसम भोक्ते स्वयं जब अवशिष्ट रसम तनिक भी रस नहीं छोड़ता संपूर्ण रूप में पान करता, अथवा जो रस का सार है वो सब ले लेता है और थोड़ा सा रस छोड़ जाता ऊपर से, बाकी सब कुछ ये ग्रहण कर लेता है अवशिष्ट रसम। उसका ऐसा स्वभाव देख करके, सौभाग्य देख करके, उसके पिता स्थानीय वृक्ष और माता स्थानीय हृदन्या, हृदन्या माने मानसी गंगा, कुसुम सरोवर, गोविंद कुंड, यमुना, ये सब ये बड़े आनंदित हुए क्योंकि इस चीज को अनुभव करने वाले ये लोग, और सब नहीं, और दूसरी संसार की ये सब नहीं, बस यही थी कृष्ण संबंधी है, विशेष करके मानसी गंगा, कुसुम सरोवर, राधा कुंड, श्याम कुंड और इधर में जमुना जी, ये सब आनंद से भर करके कमलों के बहाने ये बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। आज हमारे वंश में हमारा बेटा भगवान का इतना बड़ा भारी प्रिय हो गया, कृष्ण का संतान वही है जो भगवान का भजन है। दाम्भिक अभिमानी दुष्ट असुर स्वभाव वाले लोग भगवान के विरुद्ध, भक्तों के विरुद्ध ऐसा संतान नहीं हो, उसे बांझ रहना अच्छा है या अपुत्रक रहना अच्छा है, यदि पुत्र हो तो ऐसा
अवैष्णव सत्वपुत्र जन्म नहीं सीखी सभा शास्त्र पुह सुवर्ण मत जन्म
नदियां अत्यंत प्रसन्न है, आज हमारा वंश का हमारा दूध पिलाना सार्थक हुआ उसको, आज इतना बड़ी भगवत ये जितनी ब्रज की गोपियां हैं प्रौढ़ उम्र वाली उनको अपने पर बड़ा अभिमान है, आज हमारी बेटी कृष्ण की तैयारी है, हमारा बेटा कृष्ण की सेवा करता है, सखा के रूप में उनके साथ में रहता है, उनके पति लोग उनकी पूजा करते हैं क्योंकि अपनी पत्नियों की जो कृष्ण की सेवा करते हैं, माताएं अपनी बालिकाओं को और लड़कियों को सजा करके कृष्ण से मिलने के लिए भेजती हैं, ब्रज के अतिरिक्त कहीं नहीं है। इसलिए वो माताएं आज प्रसन्न होने कि हमारा बेटा बेनु कृष्ण की सेवा में लग गया है। और कुल वृद्ध जो वृद्ध लोग हैं, जैसे आम का वृक्ष और सब वृक्ष हैं, कटहल है, पीलू है और सब वृक्ष जो हैं, आज उनको बड़ा आनंद हो रहा है आज हमारे वंश में कुल में एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जो भगवान का भक्त हुआ और ऐसा जिसकी कोई उपमा नहीं है। ये कौन का राज देख रहा है, वो गोपियां उसी भाव से देख रही हैं। इसलिए उत्तम भक्त लोग होते हैं महाभाव, वो विश्व के प्रत्येक प्राणी को सबको ये देखते हैं कि कृष्ण का भजन कर रहा है या कर रही है, किसी को नहीं देखते जो भगवान का भजन नहीं करता है। यहाँ तक कि घास पेड़ पौधे जितने भी हैं, रज भी हैं, उन सबको देखते हैं कृष्ण की सेवा करते हैं, उनका प्रतिकूल कोई नहीं है। और हम लोगों में भी प्रतिकूल अनुकूल बहुत कुछ है, अधिकांश प्रतिकूल है अनुकूल कम, और उन लोगों में सब कुछ अनुकूल रहता है। जैसे आर्या, आर्या और आर्य अर्थात तो वृद्ध कुल, कुल के वृद्ध और कुल की वृद्ध माता है, इतना आज पुत्र रत्न पैदा हुआ क्यों हो चुकी क्यों तो था। इसलिए कुल की आर्या दूसरी बात कहते हैं, एक दूसरा इसका घूमते स्वयं जद अवशिष्ट रसम हृदय हिस्वतचो अश्रु मुचु स्तरो यथा। पहला अर्थ बतलाया ये कुल की वृद्ध नारियां, कुल वृद्ध लोग इछलाते हैं आनंद के मारे जी हमारे वंश का यह सुपुत्र पैदा हुआ जो इतना बड़ा भारी कृष्ण का प्रिय हुआ, ये पहला। अब दूसरा घूमते स्वयं हृदयो, घूमते स्वयं सर्वो यथा, नदियां स्वयं हृदयों माने नदियां और पुष्प ये सरोवर इत्यादि स्वयं भूंगते जद अवशिष्ट रसम, कृष्ण के अधर को ये नदियां स्वयं पान करती हैं। कि कैसे, स्नान करने के समय में सरोवर में स्नान किया, सरोवर में स्नान करने गए कृष्ण तो स्नान करेंगे पूरे शरीर डूब करके, चाहे वो सरोवर में स्नान करें विशेष करके राधा कुंड श्याम कुंड में सखियों के साथ में विहार करते समय पानी लीजते समय में नदियां उनके इस रस को प्राप्त होती है। बेनु कितना पात्र प्राप्त होता है उसको पान करके, आज ये नदियां धन्य हैं, ये यमुना जी धन्य है आज, इतना बड़ा भारी सौभाग्य उनको, और हम लोग इसके लिए लालायित रहते हैं और हमको नहीं मिलता। इसलिए हमारा जन्म नदी के रूप में, हम भी नदी हों या हम भी वृक्षों में, कैसे वृक्षों को कैसे सौभाग्य हुआ, आम में फल फला हुआ है, खूब सुंदर पका हुआ और कृष्ण गोचारण करने के लिए गए, सखा कहते तोड़ो बस गए हिलाया, आम धप धप करते पड़ गए और उन वृक्षों से आम है और उसको कृष्ण ने बार बार चाटते हुए खाया तो कृष्ण के मुख का रस उसमें गया कि नहीं। ओहो ये वृक्ष करें आज हम लोगों का जीवन धन्य है। इस तरह से वृक्षों की और वहां की जितनी नदियां हैं सबकी ऐसे सौभाग्य की, ऐसे ही अयोग्य में भी योग्य की उस समय में भावना होती है देखता है। इसलिए पुलिंदी कन्या का सौभाग्य अधिक वर्णन कर रहे हैं जो हमको कभी प्राप्त नहीं हो, अथच उन्हीं से संबंधित कुमकुम इत्यादि को फिर से वो धारण कर रही हैं। यक्ष स्वयं ही राधिका जी का और उसमें कल्पना कर। यहां पर भी इसी तरह से कालिंदी देवी, ये कालिंदी देवी ही विशाखा जी हैं। जमुना जी कौन है? जल रूप में
विशाखा देवी,
विशाखा विशाखा जी ही जल के रूप में जमुना, और यही द्वारका में कालिंदी बन गए। एक तरह से पेट नहीं भरता है मनोवांछा नहीं पूरी, हजारों प्रकार की इच्छा से और जैसे तैसे उसको पान कर, जैसे कृष्ण की इच्छा हुई। केवल जसोदा माँ के बलदेव जी ने कहा, जब देखा ध्यान में तो देखा, अरे ये जितने बालक हैं और बछड़े हैं सब तुम बने हुए हो, और एक वर्ष तक तुमने हमको बतलाया नहीं, क्यों, बात क्या है बतलाओ तो। तुमको एक जसोदा मैया के स्तनपान से पेट नहीं भरा तो लाखों कोटी बन करके इन सब गैयाओं के और गोपियों के माताओं के तुम आज दूध पी करके उस इच्छा को पूर्ण करना चाहते हो। इसी तरह से जैसे कृष्ण लाखों बन जाते हैं, बहुत हो जाते हैं, ऐसे इन लोग भक्तों का भी होता है। ये राधा जी अकेले कृष्ण की सेवा करके जब मन नहीं भरा तो वो स्वयं स्वयं आठ सखियां लाखों करोड़ों सखियों के रूप में हो सके, उससे भी नहीं हुआ, थोड़ा सा बाकी रह गया, क्या ऐश्वर्य भाव से वो सेवा नहीं कर सकते तो सप्तभामा और रुक्मिणी बन गए। उससे भी पेट नहीं भरता है और कुछ बाकी रह गया है जिसमें कि ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में है, तो वो बन गई
लक्ष्मी देवी।
उसे भी पेट नहीं भरा तो महामाया दुर्गा के रूप में कितने रूपों में वो प्रकट होकर के और इस प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं। कोई भी इच्छा ऐसी नहीं है जिस इच्छा को वो पूर्ण नहीं करती है, इसलिए कितने कितने रूप वो राधिका जी धारण करके और आस्वादन करते हैं। इसलिए कहते हैं जथा आर्या वृद्ध महिलाएं, जैसे कुल के वृद्ध पुत्र को देख करके खूब आनंदित होती हैं यदि वो कृष्ण का भजन करता है, उसी तरह से ये एमन की जो लोग कृष्ण के सेवा के लिए सर्वथा योग्य हैं, जैसे आर्या का यहां पर इसलिए जैसे रोदन कर रहे हैं ना कुछ वृद्ध लोग या आर्या लोग रोदन करती हैं आनंद से, कुछ विरह में भी कुछ विरोधी भाव में भी रोदन करने वाले हैं, ये कह रहे हैं आर्या। आर्या का अर्थ होगा क्या? वृद्धा है। तो द्वारका में सबसे वृद्धा कौन है?
कंस के माता,
कंस की मैया। तो ये रोती हैं जबकि नव वृंदावन हुआ और कृष्ण को देखा और देख करके एकदम दौड़ी और उस समय उनको किसने पकड़ा?
नारद
ने, उद्धव जी ने, उद्धव जी ने उनको पकड़ लिया। और सत्यभामा को कौन पकड़ लिया? सत्यभामा को किसी ने पकड़ा था?
नारद, उद्धव जी ने रुक गया सबको,
रोहिणी देवी इनको पकड़ा, सत्यभामा को, और इनको इन्होंने जाने नहीं दिया। कहते हैं जी कृष्ण का ये ऐसा लुभावना चीज है जिसके विरह में न पाने से ये लोग रोती हैं। कौन? जथा आर्या, आर्या माने कंस की मैया, अथवा राधा की सासुरी भी वो है जटिला, जटिला भी उसी में। देखो सनातन गोस्वामी कैसे हैं, ऐसे चीजों को जो प्रकट नहीं करना चाहिए उसको भी प्रकट कर देते हैं। ऐसे अयोग्य लोग भी उसे ना पाकर के शोक में रोदन करते हैं, जैसे यही रस का स्वभाव है। रूप हमेशा रसस्थिति, ऐसा ही उसका स्वभाव है। जड़ चेतन सब में ऐसी ललसा पैदा करते हैं। तो राधिका जी में हुआ तो ये कोई बड़ी भारी विचित्र बात नहीं। इस विषय में हमने बहुत सी बातों को पहले बतलाया कि प्रेम का स्वभाव क्या होता है, रस का स्वभाव क्या होता है। चैतन्य महाप्रभु जी ने भी हमारे राय रामानंद से ये सब चीजों को सुना है। कृष्ण कौन तत्व, राधा कौन तत्व,
प्रेम कौन
तत्व,
रस कौन तत्व,
रस कौन तत्व, ये पूछा। और फिर वो कहते हैं कि हमने ये चारों का स्वरूप, मैंने राय रामानंद जो प्रेम की अवधि है उसे हमने सुना और विचार। हम लोग को तो अभी कुछ मालूम नहीं होता, ये सब को सुन करके भी न जाने किसी जन्म में ऐसे भक्तों का संग हो और हम लोग थोड़ा थोड़ा सा साधन करते चले हैं, तो किसी न किसी कोटि कोटि जन्मों में कभी ऐसा हम लोग का सौभाग्य होगा तो इन चीजों को समझ सकने की चेष्टा करेंगे। ये जो अभी आलोच्य विषय हुआ, अभी जिसकी आलोचना हम लोगों ने की, ये साधन की स्थिति नहीं, ये साध्य की भी अंतिम स्थिति भावावस्था में महाभाव अवस्था का है। तो उन लोगों के लिए सनातन गोस्वामी जी क्यों यहां पर रखा है ऐसे ऐसे श्लोकों को, यदि कान में कहीं जाए, थोड़ा सा लोग किसी जन्म में हो जाए और उन लोगों के अनुगत हो करके, पहले तो सनातन और रूप के अनुगत हो, तब फिर लौंग मंजरी और रूप मंजरी के पीछे, पहले सनातन गोस्वामी के और उनके उपदेशामृत का हम अनुगामी हों, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य को छोड़ें, ये सब छोड़ करके एकांतिक रूप में उनके बने शरणागत होकर और उनके आदेश के अनुसार में चलें और भजन करें। कैसा भजन करें, कभी चना कभी उभी मना, कभी सोना कभी उभी मना, जो सोते हैं वो भी शयन नहीं, कभी आध घंटा कभी आधी घड़ी, कभी कुछ कभी कुछ, इस प्रकार से। ऐसे नहीं ये भावावेश में हम लोग दो तीन दिन कर दिया, एक वर्ष कर दिया और 15 वर्ष के बाद में फिर जे तिमिरे से तिमिरे, तो जिस तिमिर में थे उसी तिमिर में चले गए। गुरु जी कहते थे जे तिमिरे से तिमिरे, ऐसा नहीं, भजन करते करते थोड़ा सा आस्वादन होगा उसका आनंद, और तब वो धीरे धीरे बढ़ेगा, और नहीं तो कुछ दिनों के बाद में क्या करेंगे, छोड़ करके इस संसार में चले आएंगे। तो ऐसा नहीं, यदि रूप गोस्वामी की बनाई हुई पद्धति के अनुसार में हम लोग कुछ भजन करें, सबसे पहले मनसो वेग क्रोध वेग जीवा उदरोपस्थ वेग अत्याहार प्रयासश्च उत्साह निश्चया धरया तत्कम प्रवर्तना सदापि प्रतिग्रहणाति, और ऐसे ऐसे सब श्लोक हैं। यदि रुचि नहीं होती है मन में, भजन में लालसा नहीं होती, इच्छा नहीं होती, पुनः पुनः उसी को करो, करते 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 सात कृष्ण नाम चरितादि सुकृत नाम क्रमेण रसना सीता विद्या पीतोक्त रसन रुचिका। हम लोगों को भी रुचि नहीं, भजन में ही रुचि नहीं, ये थोड़ा सा कुछ हम लोगों के उद्धत स्वभाव के कारण कुछ अच्छा लग सकता है, ये अभी इस स्थिति में भजन करते में ये सब अच्छा लगे ना, रुचि के साथ में हरिनाम में रुचि हो, हरि कथा में रुचि हो, तब फिर सौभाग्य, तब फिर मन को और वाणी को दोनों को कृष्ण की सेवा में निजुक्त करो, अपने प्रिय नामों को, कृष्ण के प्रिय नामों को जीवा के साथ में उच्चारण और मन के द्वारा उन लीलाओं का चिंतन करते हुए ब्रज में रहकर अनुगामी बन करके, अनुगामी प्रधान चीज है, वैष्णव के अनुगामी न होकर के स्वतंत्र रूप में वृंदावन में नहीं रह सकते, और न भजन कभी संभव, न कहीं भी भजन संभव पर नहीं। यदि गुरुजी हमारे मन के अनुकूल में कुछ कहें तो सुनेंगे और नहीं तो नहीं सुनेंगे। और अपने मन से चलेंगे भाई भजन संभव। पांच चीजें बतलाया, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वासी मुक्ति श्रद्धा से, और पांच अंग और बतलाए, तद इज्ञाख्या ध्यान नति पंचामृतम इदम। तद इज्ञा आख्या ध्यान श्रवण नति पंचामृतम, ये पांच चीजें होनी चाहिए। प्रतिज्ञा मैंने प्रतिपूर्वक उनका भावपूर्वक अर्चन ठाकुर जी का, अभी अर्चन जानते ही नहीं, ये अर्चन क्या है, सेवा क्या है, आरात्रिक क्या है, कुछ जानते ही नहीं। सीखो पहले, कंट्रोल करने के लिए अर्चन सीखना आवश्यक है, रसोई बनाना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो वैष्णव को न गुरु को न राधा कृष्ण को किसी की हम सेवा नहीं कर सकते। फिर अर्चन भावपूर्वक, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी भावपूर्वक अर्चन करते थे, तद इज्ञा आख्या, आख्या मैंने राधा कृष्ण के लीला चरित्र श्रीमद भागवत के प्रारंभ से और गोसाइयों के ग्रंथों से, ये सब प्रारंभ से यह सब लीला चरित्र, पहले प्रहलाद महाराज जी का उपाख्यान सुनो, अजामिल का उपाख्यान सुनो, बस आचरण करने की चेष्टा करो, वृत्रासुर का उपाख्यान, देवकी और कपिल देव जी का,
कपिल देवती,
इन दोनों का संवाद करो, पुरंजन का उपाख्यान सबसे पहले सुनो, बिना पुरंजन का उपाख्यान समझे अनुभव किए हुए भजन राज्य में हम लोग नहीं बढ़ सकते। पुरंजन का उपाख्यान सुना नहीं और रासलीला सुनने लगे तो उलट करके त्रिशंकु की भांति में गिरना पड़ेगा, ये समझ रखो। इसलिए ये सब हम लोग, जैसे हमारे गोस्वामियों ने, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी ने भजन की जैसी परिपाटी दिया है, उस परिपाटी के अनुसार में हम लोग भजन करते हुए ऊपर में क्रम कर चलेंगे, ये भजन की परिपाटी इन्होंने लोग दिया, एक दिशा निर्देश की, इसमें हम लोग इस निर्देश को पालन करते हुए आगे बढ़े।
इज्जा का ध्यान श्रवण दिया तीन का थी,
अच्छा हाँ, तद इज्जा आख्यान
ध्यान,
ध्यान ध्यान मैंने राधा कृष्ण की इन लीलाओं का ध्यान, गिरिराज जी का ध्यान, जमुना जी का, ललिता विशाखा इत्यादि का ध्यान, गुरु जी का ध्यान, उनकी लीलाओं का ध्यान स्मरण किया, उनके नाम का ध्यान, ध्यान श्रवण, ऐसे सब श्रवण करना जो ये सब उन्होंने कहा, और नति मैंने बार बार दंडत प्रणाम, उस कथा के लिए, उस प्रभु के लिए, वैष्णव के लिए, गुरु के लिए, उन स्थानों के लिए, नवदीप के लिए, गौर नित्यानंद के लिए, रामानंद और स्वरूप दामोदर के लिए, ये बार बार दंडोत प्रणति यदि हम लोग करें तो धीरे धीरे कुछ हो सकते।
बृहस्पतिवार
आज क्या
है, सोमवार 30 तारीख को
जनम जनम मोह दीजियो श्री वृंदावनवास राधा परम सुखदाई, राधा परम सुखदाई। Oh,